शांति। कितना प्यारा लगता है जीवन का संगीत ये भट्टी से और साकार हो रहा है, ये अनुभव सबका है ना? तो हाथ उठाइए जिनका ये अनुभव है, बहुत ही अच्छा। अभी हम आज के मीटिंग का आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दयाल भाई जी मंच पर आए, जो इस विंग के आप अध्यक्ष हैं। तो आप बहुत जोरदार तालियों से सभी हमारे आज के मीटिंग के जो मुख्य मेंबर्स हैं तो उनका स्वागत करते जाएंगे। नेहा बेन जी जो इस आर्ट एंड कल्चरल विंग के उपाध्यक्ष हैं, तो आप नेहा बेन जी का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। दयाल भाई जी, दयाल भाई जी आपका नाम पहले, आप आइए। दयाल भाई जी, नेहा बेन जी, आदरणीय सतीश भाई जी, आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट एंड कल्चरल विंग के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी तालियां में आवाज कम है। आदरणीय प्रेम बेन जी, आप आर्ट एंड कल्चरल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आदरणीय पूनम बेन जी, आप आर्ट एंड कल्चरल विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। कुंदा बहन जी, सीता बहन जी, आप विदर्भ के आर्ट एंड कल्चरल विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। कुंदा बहन जी, आप चंद्रपुर क्षेत्र के आर्ट एंड कल्चरल विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। और हम सभी के बीच में अभी मिनेश भाई जी भी उपस्थित होंगे। तो एक बार फिर से सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये हम सभी का कितना सौभाग्य है कि इस आर्ट एंड कल्चरल विंग के द्वारा हमें इस भट्टी का मौका मिला। मैं समझती हूँ और विंग का तो शायद ही यहाँ पर भट्टी हुई है, लेकिन आर्ट एंड कल्चरल विंग की भट्टी बहुत ही अच्छी रही और आप सभी ने भी बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं और बहुत अच्छी अनुभूति कर रहे हैं। ये सबके मैसेज भी मिल रहे हैं और इस विंग की सेवाओं को कैसे शुरू किया है और कैसे सुचारू रूप से सेवाएं चल रही हैं और इस विंग की सेवाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तो इन सभी सेवाओं के बारे में आज के मीटिंग में सारी जानकारी आपको मिलेगी। और जो आपको अभी बताया कि नेहा बेन जी आप बॉम्बे से हैं, बॉम्बे गामदेवी सेंटर से हैं और आपने दादियों की बहुत ही बचपन से पालना ली है, आप दादियों के आप बहुत स्नेही रहे और हम भी आपको बचपन से जानते हैं और हमने देखा है कि आप बहुत ही नम्रचित हैं, बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही मिलनसार भी हैं और आप आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी और उषा बहन जी के साथ आपने विंग की सेवाओं को बहुत अच्छे रूप से इस सेवाओं को आगे बढ़ाया है और आप गामदेवी सेंटर पर करीब 28 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 35 वर्षों से आपने अपने इस जीवन को समर्पित किया है और आप वर्तमान समय में आर्ट एंड कल्चरल विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप यूट्यूब चैनल पे तो आप सभी देखते होंगे। तो विधि से सीधी जो मुरली का सार आप सुनते हैं, जो सुनते हैं मुरली वो हाथ उठाएं, नेहा बेन जी को आप सुनते हैं, बहुत ही अच्छा। तो अभी हम बाबा की याद में बैठे थे, फिर से हम सभी के बीच में इस कार्यक्रम को मीटिंग को शुरू करने से पहले हमारी रानी बहन जी आ रही हैं और रानी बहन जी अपना गीत हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेगी और आप पीली बंगा सेंटर की सेवाओं को देखते हैं, बहुत अच्छे रूप से वहां की सेवाओं को आप देखते हैं और आप बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं और आप विंग की सेवाओं को भी बहुत अच्छे रूप से करते हैं। तो सर्वप्रथम हम रानी बहन जी से बाबा का मधुर याद का एक गीत सुनेंगे, फिर इस मीटिंग का शुभारंभ करेंगे।
ओम शांति। हम 3 दिन से भट्टी कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो मैंने कुछ छोटा सा गीत इसके ऊपर बनाया है और जिसमें माया की हार होती है और बाबा की जीत होती है, ऐसा एक गीत है। थोड़े से शब्दों का गीत है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और योग भी कर सकते हैं। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज माया की हार हुई है, आज बाबा की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। कोई बाबा की आँख का तारा, जीवन साथी सच्चा हमारा, और कोई तकदीर कमारा, ढूंढ रहा है दिल का सहारा, उसी ने हमें प्यार दिया है, उसी की होगी जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज माया की हार हुई है, आज बाबा की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन जी का। जोरदार तालियों से आप सभी कल्चर विंग के मेंबर हैं। अभी नेहा बहन जी का कुछ परिचय आपको मिला कि बाल्यकाल से ही आप इस ज्ञान में चलते हैं और आपने विशेष पालना गामदेवी सेंटर पर अपनी शिलेंद्रा दादी जी रहते थे और बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी ने भी वहां पर सेवाएं दी और दादी प्रकाशमणि जी से भी आपका बहुत ही स्नेह और आपने पालना ली है। तो ऐसी मीठी नेहा बहन जी से, जो इस विंग के भी आप पूरे सेवाओं को देखते हैं, तो हम आपसे आज के विंग की सेवाओं के बारे में, आपकी दादियों के प्रति से भी क्या प्रेरणा है, दादियां बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो विंग के बारे में आप थोड़ी प्रेरणाएं देंगे कि जिससे सभी में उमंग उत्साह आएगा और सेवा सुचारू रूप से कर सकेंगे। आदरणीय नेहा बेन जी।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम सबके इस ब्राह्मण जीवन के आधार मूर्त सभी हमारी दादियां, जो अभी भी पूर्वज रूप में हम सभी को प्रेरणाएं दे रही है, शक्तियां दे रही है, और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर विंग के आधार स्तंभ, प्रेरणा स्रोत समान हमारे आदरणीय रमेश भाई जी, उषा दीदी और हमारी कुसुम दीदी, जो अव्यक्त रूप में हम सभी के साथी है, महसूस हो रहा है ना? महान आत्माएं जब अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करती है नई सेवा के लिए, तो साकार में की हुई सेवा को वो और बल प्रदान करते रहते हैं, जो हम सभी महसूस कर रहे हैं। आप सभी विंग के लाइफ मेंबर्स की इतनी अच्छी संख्या में उपस्थिति ही जाहिर करती है कि कितनी प्रगति हो रही है। लेकिन समय के साथ साथ प्रगति की परिभाषा में और पुरुषार्थ में हमें थोड़ा परिवर्तन भी लाना है, और उसी के लक्ष्य को लेकर कोरोना के बाद पहली हमारी शुरुआत योग तपस्या भट्टी से हुई। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ज्ञान सरोवर के बाबा के इस बेहद तपस्या के स्थल पर हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से स्वयं को भरपूर किया है। किया ना सभी ने? अभी तो एक दिन बाकी है, फिर भी ये लग रहा है कि सचमुच अव्यक्त पालना क्या होती है, शक्तिशाली स्थिति क्या होती है। और हम सभी तो है ही कल्चर विंग वाले, जिस कल्चर को, जिसकी शुरुआत सत्युग से होनी है ना? नशा होना चाहिए हम सभी को कि हमारे देवी कल्चर को शुरुआत से ही पवित्र आत्माएं धारण करके इस भारत, अविनाशी भारत देश का नाम रोशन करने वाले हैं। ऐसे कल्चर को बनाने के निमित्त हम सभी विंग के मेंबर्स हैं। तो सोचो, हमारा प्रैक्टिकल में कल्चर कैसा होना चाहिए। हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की, आज तक अभी भी हो रही है, और अभी तो और तीव्र गति से सेवाएं होनी है, क्योंकि अब बाप दादा और हमारी सारी एडवांस पार्टी इस प्रत्यक्षता के दौर को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। अनुभव हो रहा है, संकल्प की आवश्यकता है, बस सफलता तो हुई पड़ी है, लेकिन इसके लिए हम सभी विंग के भाई बहनों को सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति को ऐसा देवी कल्चर, डिवाइन कल्चर, दिव्य गुणों से सजाना है अपने आप को कि हमारे व्यवहार को, हमारे चलन और चेहरे को देखकर कोई भी पहचान जाए कि ये तो आर्ट एंड कल्चर विंग के मेंबर्स हैं, जो अपनी चलन से ही संस्कृति की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा श्रेष्ठ संकल्प रखकर हम सबको अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाना है, क्योंकि बाबा अब ये चाहते हैं। और आपने इतने दिनों में सुना कि जो आत्मा की स्थिति शक्तिशाली, बुद्धि क्या तार बाबा से जुड़ा हुआ है, उनकी सेवाओं में पदम गुना सफलता मिलेगी। समय कम, शक्ति कम और सफलता ज्यादा। तो अब ऐसी सेवा करेंगे ना सभी, इसलिए हम सभी यहां भट्ठी में आए हैं, इसका पूरा पूरा लाभ लेकर सारी बातों को अंदर में ऐसे संभालो कि बस बाबा अब हम नई दुनिया के लिए तैयार हुए कि हुए। अगर स्थापना हो जाए तो हम कह सके कि बाबा अब हम नई दुनिया में पार्ट बजा सकेंगे। तो हमारी विंग ही हमें बार बार ये रिमाइंड कराएगी, कला संस्कृति, हे आत्मन तुम्हें 16 कला संपूर्ण सुसंस्कृत देवी संस्कृति वाला बनना है। तो हमें तो ये बहुत सहज हो जाएगा, विंग के मेंबर है, लाइफ मेंबर है, तो पल पल ये याद रहे कि हमें देवी गुणों से सज्ज होकर श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण स्वयं से करना है। पहले मेरे भीतर वो संस्कृति आ जाए, अब हमें ये लक्ष्य रखना पड़ेगा। बस अपने भीतर ये संस्कृति आ गई तो बाहर तो अपने आप आ जाएगी। तो हम ये दृढ़ संकल्प करें। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ अभी हम विंग की सेवाओं को कैसे बढ़ाना है, आप सभी को देख करके बहुत सारी प्रेरणाएं मन में आ रही है, और विशेष आज आप मंच पर देख रहे हो कि हमारे विंग के निमित्त सभी बाबा के विशेष रतन, और उसमें भी हमारे आदरणीय दयाल भाई जी और हमारे सतीश भाई जी जो मधुबन की बेहद भूमि में रहकर दिन रात विंग की प्रगति के लिए हमेशा नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं। आप सभी के लिए भट्ठी भी आज जो आयोजन हुई उनके पीछे भी आपका बहुत पुरुषार्थ रहा, कैसे भी करके डेट ले ली। हाँ तो देखो दयाल भाई जी ने भी मेहनत किया और आज हम सभी को उसका फल मिला। तो दयाल भाई जी और सतीश भाई जी का हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि बाबा की वरदानी भूमि से आप हमेशा अपना बहुत बहुमूल्य योगदान देते रहते हैं। और बाकी तो हमारी प्यारी साथी बहनें जिसको आप देख रहे हो, पूनम बहन है, प्रेम बहन है, और साथ साथ हमारे दीदी कुसुम दीदी के बाद आज हम देख रहे हैं कि चंद्रपुर की सेवाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी कुंदा बेन, मीठी मीठी कुंदा बेन, जिन्होंने भी अपनी ताकत को अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा सारा कारोबार संभाल लिया है। तो सभी बहनों के और हाँ विशेष आप सभी का साथ और सहयोग, इससे विंग की सेवाएं भी हमारी बढ़ती ही जा रही है। तो आज भी आप सभी के लिए काफ़ी बातें हम सभी ने बैठ करके सोची है कि क्या क्या किया जाए। तो अभी आपके सन्मुख ये सारी बातें रखी जाएगी और बड़े ध्यान से आप सभी भी सुन करके उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाना है, ताकि सेवा और स्वस्थिति दोनों का बैलेंस रखकर हमें अभी जल्दी से जल्दी बाबा के इस स्थापना के कार्य को संपन्न बनाना है और उसमें हमारा पूरा पूरा योगदान देना है। हमारे मिनेश भाई भी है, आप सभी को एक एक विंग के मेंबर से परिचित भी करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बेन जी, आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत कुछ बातें बता दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बताया कि कुसुम दीदी के बाद जो चंद्रपुर की सेवाएं अपनी कुंदा बहन जी देखती हैं, और कुंदा बहन जी दीदी के साथ राइट हैंड बन करके वहां की क्षेत्र की पूरी सेवाएं आप संभाल रहे थे, और अभी भी आप दीदी के बाद आप पूरी सेवाएं बहुत अच्छे रूप से, हम भी वहां पर अभी गए थे दीदी के श्रद्धांजलि सभा में, तो हमने देखा कि बहुत अच्छी सेवाएं हैं और आप बहुत अच्छे रूप से दीदी के बाद, और आप सभी को मालूम ही होगा कि कुसुम दीदी जी जो इस विंग के उपाध्यक्ष थे, और आप मार्च 16 दीदी अव्यक्त हुए, और आप आदरणीय रमेश भाई जी और आदरणीय उषा दीदी जी के बाद आपने इस विंग की सेवाओं को बहुत बढ़ाया आदरणीय कुसुम दीदी जी ने, तो कुसुम दीदी जी के बाद आप वहां के चंद्रपुर की सेवाएं देखते हैं और वहां की विंग की सेवाएं भी देखते हैं, और दीदी के साथ आपने विंग के जो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा विंग मेंबर जो है आपने बनाया दीदी के डायरेक्शन के अनुसार 370 विंग के मेंबर से सभी जोरदार तालियों से अपने कुंदा बहन जी का भी अभिनंदन करेंगे कि आपने इतने सारे मेंबर्स जो है अकेले चंद्रपुर से बनाए। तो अभी हम आपने दीदी के राइट हैंड बनकर के जो वहां की सेवाओं को देखा, तो आप दीदी के अपनी कुसुम दीदी जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे आदरणीय कुंदा बहन जी।
ओम शांति। परम कलाकार प्यारे मीठे शिव बाबा, मंच पर उपस्थित महान कलाकार हमारे आदरणीय दयाल भाई जी, नेहा दीदी जी, सतीश भाई जी, प्रेम दीदी जी, पूनम दीदी, सीता दीदी, मिलिन भाई और हमारी भावना बहन, मंच सजा सजाया है। इस मंच पर साकार रूप में हम सब तो उपस्थित हैं, किंतु मैं समझती हूँ कि हमारी आदरणीय ममता में प्यारी मीठी तपस्विनी राजयोगिनी कुसुम दीदी जी भी सूक्ष्म रूप से इस मंच पर विराजित हैं, और सभी मेरी ख्याल से दीदी जी के बारे में परिचित ही हैं। सभी को पता ही है कि दीदी जी आर्ट एंड कल्चर विंग के वाइस चेयरपर्सन थे। दीदी जी का मैंने देखा हमारे सतीश भाई जी, दयाल भाई जी से तथा हमारी नेहा दीदी से और विंग के सभी सदस्यों से बहुत प्यार था। दीदी जी अंत तक सेवा करती रही, भले ही वो तन उनका स्वस्थ नहीं भी था, लेकिन मन दीदी जी का हमने देखा, मन से वो सदा ही मस्त रहते थे। कुछ न कुछ सेवाओं में दीदी जी व्यस्त रहते थे। जब जाते जाते भी पता नहीं दीदी जी को क्या लगा, क्योंकि अब सभी को पता ही होगा कि चंद्रपुर में 2-3 प्रोग्राम जैसे कि ग्लोबल फेस्टिवल तथा एक शाम प्रभु के नाम, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स ग्राउंड में दीदी ने अरेंज किए थे। वो प्रोग्राम बहुत सफल हुए, बहुत सुंदर रहे, किंतु कोरोना काल आया और दीदी जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण लगभग इन 5-6 सालों में चंद्रपुर शहर में ग्राउंड पर प्रोग्राम नहीं हुआ था। तो दीदी जी ने उस प्रोग्राम की भी पूरी तैयारी कर ली थी, जो हमारा आजाद भारत का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर, ये प्रोग्राम की फुल तैयारी में दीदी जी लगे थे। जाते जाते दीदी जी में बहुत उमंग उत्साह था, तो हमें अभी तक भी दीदी जी का वो शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उस स्वरूप कभी याद नहीं आता। उनका अंतिम स्वरूप जैसे शुरू वाला था, युवा अवस्था वाला, ऐसे भाग दौड़ वाला, वही हमको याद आता था। तो दीदी जी का स्वास्थ्य वास्तव में 2021 में जब अहमदाबाद में एडमिट थे तब काफी ठीक नहीं था, तभी हमको ऐसा नहीं लगता था कि दीदी जी को हम चंद्रपुर ले जा सकेंगे, परंतु बाबा की बलिहारी ड्रामा की भाभी की जो दीदी जी अहमदाबाद से चंद्रपुर में जाकर के 4-5 महीना रहकर सभी से मिले और विशेष ये प्रोग्राम जो अभी हमने कहा ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो जाते जाते दीदी जी का एक लक्ष्य था कि बड़ा प्रोग्राम कर लूं, मुझे ऐसे लगता है, किंतु ड्रामा कहे उन्हें समय नहीं मिला। और यह जो अमृत महोत्सव प्रोग्राम है ये 20 मार्च को था और दीदी जी ने 16 मार्च को अपने पुरानी देह का त्याग किया और अव्यक्त लोक जाने के बाद भी वो बहुत सारी सेवाएं संपन्न कर रहे। तो विशेष रीति से 20 मार्च को जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम की तैयारी फुल दीदी जी ने की थी बड़े उमंग उत्साह के साथ। तो खास जो पर्यटक स्थल है विशेष वहां का ताड़ोबा आदि ऐसे जगह पर जाकर के दीदी जी ने हमारे जो आने वाले दयाल भाई जी आदि उस प्रोग्राम के लिए है उन सब के लिए कमरे भी तय किए थे। तो कहने का भावार्थ जैसे कि वो आत्मा सेवाओं में सदा व्यस्त रही, उन्हें सेवा बाबा और यज्ञ से बड़ा प्यार था, उतने ही वो त्यागी थी। इकोनॉमी में बहुत हमने दीदी जी से सीखा, हम उनके अंगसंग रहे, उनकी पालना का सौभाग्य मुझ आत्मा को मिला। तो 20 मार्च का प्रोग्राम भी दीदी जी ने कर ही लिया, भले वो साकार रूप में उपस्थित नहीं थे पर उनकी एक पावर उनकी प्रेरणाएं जैसे मुझ आत्मा के साथ थी और वो प्रोग्राम इतना सरल और इतना सहज हो गया। तो उसके लिए मैं दीदी जी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स देती हूँ कि दीदी जी ने ही वो प्रोग्राम पूरा कर लिया। और हमारे आदरणीय दयाल भाई जी, सतीश भाई जी, नेहा दीदी आदि इन सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीदी जी के साथ में आप नम्रता से चलते थे, आपने दीदी जी को बहुत सहयोग दिया, दीदी जी आप पर बहुत खुश थे और हमेशा ही इन रत्नों का नाम दीदी जी लेते थे। तो ये वहां पर पहुंच गए दीदी जी के समय में आकर के मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे उमंग उत्साह दिया, प्रेरणाएं दी, शक्तियां दी और अभी तक भी मेरे साथ खड़े हैं। तो दीदी जी जो विंग का कारोबार संभालती थी तो सभी को पता ही है बड़े तो बड़े होते हैं लेकिन जो उनके साथ में रहते वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो आपने भी दीदी जी के साथ सेवाओं को विंग्स के बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए बहुत सारी सभी विंग्स के जो एक्टिव मेंबर हैं और खासकर हमारे मंच पर उपस्थित जो दिव्य रत्न हैं इन्होंने दीदी जी को बहुत सहयोग दिया और बहुत अच्छे रीति से हमें अभी तक भी मुझे ये नहीं फील होता है कि आप कोई अलग है लेकिन परिवार की भावना आती है। हमारे सतीश भाई जी से, दयाल भाई जी से, हमारी नेहा दीदी से, पूनम दीदी से, प्रेम दीदी से, जैसे हमारे मधुबन के हैं, बेहद हैं लेकिन ऐसा स्नेह है, ऐसा प्यार है कि मुझे उनके साथ रहकर करीब की भावना आती है। तो इन सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। जो विंग्स की सेवाएं चंद्रपुर नगरी में हुई है, आजू बाजू में हुई है, दीदी जी का बड़ा योगदान रहा, प्रेरणा ही रही। भले ही दौड़ने वाले हम थे लेकिन दौड़ाने वाले वही थे, इसीलिए सारा ही जैसे एक छत्र छाया के रूप में, माँ की तरह, शिक्षक के रूप में, साथी के रूप में, हम सब चंद्रपुर निवासी बहनों ने भी दीदी जी के बहुत प्यार को पाया, पालना को पाया। दीदी जी के पीछे हम सब 22 बहनें हैं और लगभग 3,500-4,000 से अधिक हमारे सभी भाई बहने हैं। और कल्चर विंग में जहां तहां कभी भी हमारे भाई बहने भी आकर के सदा ही जब भी मधुबन से या विंग का प्रोग्राम आता है तो दयाल भाई जी, सभी हमारे भाई बहने भी हम आते रहेंगे और बहुत सहयोग देते रहेंगे। तो आज विशेष मुझे कहा गया दीदी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो प्यारी मीठी दीदी जी, साकार रूप में भल हमारे साथ नहीं है किंतु आज भी उनकी प्रेरणाएं, उनकी शक्तियां, उनकी महक को हम अपने करीब, अपने पास, अपने में अनुभव करते रहते हैं। तो तो दीदी जी हमारे साथ थी, है और सूक्ष्म रूप से अभी भी रहेंगे। ऐसे आदरणीय मीठी प्यारी दीदी जी को मैं वंदना करते हुए दिल के श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। श्रद्धा सुमन हृदय से नमन आंखों से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। ओम शांति।
वास्तव में दीदी ममतामयी स्नेहमयी माँ थी और मैं कहूँगी कि इस विंग में जोड़ने के निमित्त मुझे आदरणीय कुसुम दीदी जी ही रहे हैं, क्योंकि मैं किसी भी विंग से सेवाएं सब विंग की करते थे लेकिन किसी विंग से हम जुड़ते नहीं थे एक्टिव रूप से। तो दीदी स्पेशली फोन करती थी और फोर्सली कहती थी आपको आना है, आपको करना है, आपको पहुंचना है। तो मैं कहूंगी कि मुझे भी इस आर्ट एंड कल्चरल विंग में जोड़ने के निमित्त तो आदरणीय कुसुम दीदी जी ही रहे। और बहुत बार दीदी का स्पेशली फोन आता था और कहते थे और अधिकार से दीदी सेवाएं बताते थे। तो मैं कहूंगी कि आदरणीय दीदी जी को शत शत नमन, हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित। और जो दीदी की इच्छा और प्रेरणाएं और जो संकल्प था कि इस विंग को बहुत ही आगे बढ़ाया जाए और सब विंग यानी कि कल्चरर के जो भी आर्टिस्ट है जो भी हैं उनको बाबा के समीप लाया जाए, तो हम सभी संकल्प को पूरा करेंगे। और मैं देखती हूँ बीच बीच में एक दो भाई बहने उठ रहे हैं। आप हम सभी इस विंग की ही भट्टी में आए हैं तो कृपया आप सभी से नम्र निवेदन है, तो जो भी भाई बहने बैठे हैं वो सभी बैठे रहेंगे। और बहुत लंबा नहीं है लेकिन इस विंग की सेवाओं को हमें बढ़ाना है तो जरूर सभी अपनी अटेंडेंस देंगे और सभी बैठे रहेंगे और जो भी और आवाज सुन रहे हैं तो वो भी वापस आ जाएंगे। अभी आगे सभी का बहुत ही उमंग उत्साह कल बढ़ाया, किसने बढ़ाया हा? क्लास हम सबको मिली आदरणीय सतीश भाई जी की। किस पर क्लास थी सतीश भाई जी की क्लास? स्वराज्य अधिकारी। और भ्राता जी स्वयं स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सदा सेट रहते हैं और आप भी हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं लेकिन विंग की सेवाओं को बहुत अच्छे रूप से देखते हैं और आपको सदा ही लगन रहती है कि कैसे ये सेवा बढ़े। और हर एक विंग के मेंबर चाहे है या नहीं लेकिन वो भी इसमें जुड़े और इस सेवाओं को आगे बढ़ाए। तो सतीश भाई जी का क्लास ही आप सबने किया है तो ज्यादा मैं परिचय नहीं देती हूँ, आप सभी परिचित हैं। तो आदरणीय सतीश भाई जी को हम निवेदन करेंगे कि आप आगे जो आजादी का अमृत महोत्सव ये वर्ष चल रहा है और भी आगे हम इस विंग की सेवाओं को कैसे बढ़ाना है, कैसे इस सेवा को करना है, तो आप ये शुभ प्रेरणाएं आप देंगे आदरणीय सतीश भाई जी।
ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ये वर्ष जो चल रहा है अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ब्रह्मा कुमारी इसका ये थीम है, अम्ब्रेला थीम, और उसके अंतर्गत इस वर्ष को करुणा एवं दया वर्ष, करुणा और दया के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ये मीटिंग में प्रस्तावित हमारा जो है वो टाइटल है, शीर्षक है, और इसी शीर्षक के अंतर्गत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और होने वाले भी हैं। और आप सबको भी अगर करना है तो इसके इर्द गिर्द ही ऐसा टॉपिक बनाएं जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव आ जाए और हम स्वर्णिम भारत की ओर चल रहे हैं। और ये कार्य तब संपन्न होगा जब हम दया और करुणा की संस्कृति लाएंगे। संस्कृति इसलिए कह रहा हूं कि अगर कल्चरल विंग से जोड़ना है तो इसके अंतर्गत टॉपिक के अंतर्गत आप सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आज बहुत खुशी हो रही है, आप सब बैठे हैं, इतने भाई बहने प्रायः और सब जगह कार्यक्रम करते रहे हैं लेकिन हेडक्वार्टर में इतने भाई बहनों की मीटिंग एक साथ ही हो ऐसा प्रायः हुआ नहीं है। आज मैं देख रहा हूं हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार दादी जो कल्चरल की सेवाओं के जो मुख्य पुरोधा रही हैं, जो संवाहिका रही हैं, जो प्रेरणा स्रोत रही हैं, जो आधार स्तंभ रही हैं, आदरणीय दादी गुलजार दादी ने किस तरह से कल्चरल विंग की सेवाओं के लिए हमारे आदरणीय दयाल भाई जी को प्रेरित किया, उषा बहन और रमेश भाई ने दादी के साथ मिलकर सारी सेवाओं को स्तंभ बनकर के संभाला, बढ़ाया, और उसके बाद कुसुम दीदी ने इसको पल्लवित किया, पुष्पित किया, सुगंधित किया और इस मुकाम तक लाया। आज वो हमारे बीच में होंगी और देख रही हैं इस सेवाओं को, बहुत खुशी हो रही होगी। एक बार हम सब दिल से ताली बजा करके दीदी जी का हम स्वागत कर रहे हैं इस सभा में। और अभी आप जानते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितना टारगेट हमने टारगेट बनाया था, कितनी सेवाएं करेंगे, उसका मल्टीपल बहुत ढेर सारी सेवाएं वो हो रही हैं। भारत सरकार भी देख रही है कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारीज और इसके तमाम जो विंग्स हैं, प्रभाग हैं, बहुत सेवाएं आगे को बढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सब ने भी निर्णय लिया कि कल्चरल विंग की सेवाएं करेंगे। सच तो यही है कि कल्चरल की सेवाओं के बिना और सेवाएं हो ही नहीं सकती। आज चारों तरफ जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो देखने में आ रहा है कि हम सब कहां किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, उसका कारण कोई ध्वनि प्रदूषण, कोई वायु प्रदूषण, कोई प्राकृतिक प्रदूषण, कोई और प्रदूषण नहीं है। सबसे बड़ा प्रदूषण है, कौन सा प्रदूषण है? सांस्कृतिक प्रदूषण। कहते हैं जहां की संस्कृति अगर बिगड़ जाती है तो राष्ट्र ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। और यही आज भारतवर्ष है कि जिसकी संस्कृति आज गायब होने लगी है, अपनी उस स्वर्णिम संस्कृति भूल गए हैं, इसलिए आज सांस्कृतिक प्रदूषण फैल गया है और दैवी संस्कृति के पुनरुत्थान की आज फिर से आवश्यकता है। जब हमारा भारतवर्ष अपनी दैवी संस्कृति को पहचानेगा और उसका अनुकरण करेगा तो फिर से भारतवर्ष हमारा फिर से वो स्वर्णिम भारत बनेगा। ये हमारे कल्चरल विंग। और आपको ये भी पता है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरे कल्प में अगर कोई विंग, एक विंग चलता है तो कौन सा विंग है? कौन सा विंग है? कौन सा विंग है बोलिए? हाँ, आर्ट एंड कल्चर विंग होगा। वहां एग्रीकल्चर हो ना हो, लेकिन कल्चर जरूर होगा। एग्रीकल्चर तो द्वापर युग से शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक कल्चर से कोई एग्री नहीं होगा तो एग्रीकल्चर भी नहीं होगा। इसलिए आप शुरू से लेकर के उसके साक्षी भी हैं और आप आगे बढ़ने वाले हैं, फिर से हम सब देवी देवता बनने वाले हैं। तो अपनी संस्कृति को, अभी बाबा किन दिनों में वाणी सुन रहे थे, कल सुना, परसों सुना, तो बाबा कहते बच्चे तुमको कोई और चिंता ना हो, लेकिन एक चिंता जरूर होनी चाहिए, कैसे बाबा का संदेश घर घर में पहुंचाए, है ना? तो आपको चिंता है? चिंता है किसको? चिंता है सबको, चिंता है ना भाई, सबको चिंता है। चिंता नहीं होती तो आप यहां क्यों बैठे होते? कल्चरल विंग में आ गए तो आपको अपने चिंतन को चिंता के रूप में लाना है, और दूसरी चिंता हो ना हो, लेकिन कैसे बाबा का मैसेज दें इसकी चिंता होनी चाहिए। आप सोचो चिंता करने से फायदा क्या है और चिंता क्यों करें? चिंता इसलिए करना है कि आप सब इसमें से जितने भी भाई बहने बैठे हैं, आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी है? ताजपोशी हो गई ना आपकी। अब ताजपोशी हो गई है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि ताज भी मिल गया, तिलक भी मिल गया, तख्त भी मिल गया, अब आपको साम्राज्य जो है अपना बनाना है, प्रजा बनानी है। आप जहां कहीं भी दुनिया के कोने में, देश में, कहीं पर भी हैं, आप हर एक को, एक एक को ये जिम्मेदारी समझनी है कि आज का दिन मुझे मनसा के द्वारा कलाकारों की सेवा करनी है, वाचा के द्वारा जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी सेवा करनी है, धन के द्वारा जितना भी हो वो हम विंग की सेवाओं में लगाएं, जन के द्वारा जितने भी हमारे परिवार के जन हैं, जो संबंध में आते हैं, उनको भी कल्चर से जोड़ना है। कल्चर से जोड़ने का मतलब है सबसे बड़ी सेवा ये है कि हमारे, जैसा हमारी नेहा दीदी बोल रही थी, हमारे चलन, हमारे चेहरे, हमारे कर्तव्य, हमारा जो है वो कल्चर्ड होना चाहिए। दैवी संस्कृति आएगी,
आपको क्या करना है वो बाद में, लेकिन आपका चलन, आपके चलन, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व वो बताए। बाबा कहते हैं चलते चलते आप चलचित्र बन जाए, चलते फिरते चलचित्र बन जाए, प्रदर्शनी बन जाए, म्यूजियम बन जाए, कि हमको म्यूजियम में लेकर जाने की जरूरत न पड़े, अगर आपको म्यूजियम देखना है तो हमको देख ले। तो हमारा एक एक कर्म के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। आइंदा से हम सब यही लक्ष्य बनाए, पक्का बनाए, जैसा कि उषा बहन जी अभी क्लास करा रही थी, तो कल्चर का ही पोल्यूशन है। इच्छाएं अनंत है, हमारे निश्चय की परीक्षा हो रही है, कदम कदम पर पेपर है, सांस्कृतिक प्रदूषण फैला हुआ है, और हमको निश्चय के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी कृति के द्वारा, अपनी समष्टि को, सृष्टि को, संकल्पों से, कैसा भी करके वृत्ति से वायुमंडल बनाने के लिए बाबा कहते हैं। तो आज आप सब यहां बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक इशारा देना चाहता हूं। कई कई भाई बहने पूछते हैं भाई हम कल्चरल विंग के मेंबर बन गए, आप में से जरा हाथ उठाएं जो पहली बार जो कल्चरल विंग के मेंबर बनकर के यहां उपस्थित हैं। लंबा हाथ उठाएं जरा, तो लंबा हाथ उठा ले, बहुत ढेर सारे हैं। इसलिए बताना जरूरी है कि कल्चरल विंग के आप मेंबर बन गए तो करना क्या है, विंग के मेंबर बन गए तो फायदा क्या है, और विंग के मेंबर बना जाए और बनाया जाए, या आगे सेवाओं कैसे बढ़ाया जाए तो कैसे बढ़ाया जाए। तो एक तो ये है पहली बात कि आपको अब ताजपोशी हो गई है, तो आपको अपने व्यक्तिगत रूप से, आपके व्यवहार से, आपकी कला से, आपके चरित्र से, आपकी दृष्टि वृत्ति से सबको लगे कि ये कल्चर विंग वाले हैं। कोई ये ना कहे ये कल्चर वाले हैं, अनकल्चर्ड काम कर रहे हैं, अनडिसिप्लिन्ड है, ऐसा ना कोई कहे। आप समझ गए ना हमारी बात। इसलिए आइंदा से अगर सेवा करनी है कल्चर की, तो हम अपने व्यवहार को देखें, हमारे से दैवी संस्कृति की झलक मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वही है, सेवा का आधार है कि किसी को हम कह के बताएं, उसके बजाय हम करके बताएं। हम ऐसा कुछ करें कि लोग हमारे लिए लिखें, बजाय इसके कि हम लिखें, हम कविता बनाएं, हम ये बनाएं, बल्कि हम ऐसा बन जाएं कि लोग हमारे लिए बनाएं, कविता बनाएं, हमारे लिए लिखें, हमारा लोगों के बीच में ऐसा पुटअप हो, ऐसा हम आदर्श बन करके आएं कि ताकि आने वाली पीढ़ियां या जो भी पीढ़ियां हैं वर्तमान समय, सब लोग देखें और हमको फॉलो करें। तो एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, मनसा सेवा। आपको अमृत बेले बैठते हैं, तो अमृत बेले जहां पर आप बाबा से रूहियान करते हैं, बाबा आज ये कर दो, बाबा आज ये काम होना चाहिए, ये नहीं कहना है, बल्कि आपको अब रूहियान में ये करना है कि बाबा सबका भला तो हो ही रहा है, हमारे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस पहले जिनके कारण सृष्टि का अधो पतन हुआ है, ये फिल्म जगत आप जानते हैं, आज फिल्मों ने बंटाधार कर दिया है, कहां पर गए हैं आज के दुनिया के लोगों के लिए आदर्श, तो हीरो हीरोइन हो गए हैं। अब उनका जब कल्याण होगा तो वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, आने वाले समय में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, फिल्मों के बहुत बड़े 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 बनाने वाले प्रोड्यूसर, निर्माता, गायक, सिंगर जितने भी हैं, ये सब आएंगे और आपका काम ये करेंगे। तो हम उनको प्रेरित करें, तो उसके लिए मनसा सेवा करें। आओ आओ बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड जितने भी उड़ हैं, वो सब आए और आकर के बाबा को पहचाने, इसके कर्तव्य को जाने, ईश्वरीय सेवा की योजना को जाने, और सब ये काम करें, क्योंकि अब हमारी संस्कृति बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, और आपने ही गड़बड़ किया है तो आपको बनाना है, आपने ही गड़बड़ किया है तो बनाएगा कौन, बनाए बनाना है तो आपको। तो एक बार मनसा सेवा के लिए सवेरे जब बैठे, सब कलाकारों के सामने इमर्ज करें, उनको उपस्थित करके उनको वाइब्रेशंस दे, ऐसे एक को दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उनको सुनाई पड़ेगा कहीं से आवाज आ रही, कोई बुला रहा है, और उनको दिखाई पड़ेगा कि माउंट आबू से कल्चरल विंग के ये लोग बुला रहे हैं। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो। ये सेवा का रूप होना चाहिए, आप चिंता का रूप होना चाहिए कि आपको ये सेवा में करना है, सवेरे सवेरे बैठ के ये सेवा करेंगे तो हमारी सेवाएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, विंग के मेंबर आप इसलिए बने हैं कि आपके इर्द गिर्द आस पास पड़ोस में देखना है, लिस्ट बनानी है कि कलाकार कौन है। आप पूछे कि हमारे यहां तो बॉलीवुड के कलाकार नहीं, ऐसा नहीं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया में धरती ये मंच ही हमारा स्टेज है, वर्ल्ड के स्टेज पर हम सब एक्टर हैं, और हम सब एक्टर नहीं है, हम सब कौन है, हम सब कौन है, हम सब हीरो और हीरोइन पार्टधारी हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा ड्रामा बना हुआ है। तो हम सब भी कलाकार हैं और सारी धरती पर जीने वाले सब कलाकार हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारे यहां कलाकार ही नहीं। आप उनको बताइए कि आप सबसे बड़े कलाकार हैं, उनका उमंग उत्साह बढ़ाइए, उनको बताइए। मतलब एक ही हो कि बाबा का संदेश जाए, चाहे वो कलाकारों में जाए, चाहे कैसा भी करके। तो हमारे पास आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से कलाकारों को चिन्हित करने के लिए कौन कौन से कलाकार हैं उनकी रूपरेखा बनाई। चार प्रकार के कलाकार बनाए गए। एक कलाकार है जो स्टेज आर्टिस्ट है, जो मंच के कलाकार है। मंच के कलाकार, जरूरत नहीं है कि हारमोनी हॉल का मंच मिले, कहीं डुगडुगी बजाते हैं मदारी ना, वो भी कलाकार हैं। वो डुगडुगी बजा के लोगों को बुला लेते हैं। जादूगर बड़े बड़े कलाकार होते हैं। मंच के आगे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं और ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं, आप देख ले। एक तो है स्टेज आर्टिस्ट। दूसरे आर्टिस्ट होते हैं नेपथ्य कलाकार, एकॉम्पनिस्ट, जो मंच पर तैयार करके लोगों को ले आते। आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े कैमरामैन, उनके अंदर आर्ट बहुत गजब की है। आपके अंदर खूबसूरती हो ना हो, लेकिन आपको ऐसे एंगल से दिखाएंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे आपको। तो कैमरामैन या जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, मेकअप मैन, जो आप भले अपना उनका सूरत अच्छी हो ना हो, लेकिन आपकी सूरत देखने लायक भी नहीं होगी, लेकिन मेकअप करके ऐसा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, है ना। भगवान ने हमको ब्यूटी पार्लर में, बड़ी ब्यूटी पार्लर दे दिया ब्रह्मा कुमारी संस्था का, हम सब कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां दुनिया के लोगों को बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, भले सफेद कपड़े में है। क्यों? क्योंकि रियल ब्यूटी निकलती है, प्रसन्नता, खुशनुमा चेहरा, सादगी, सच्चाई, प्योरिटी, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि लोग देखते हैं। हमारे पास नीचे एक भाई आए और परिचय कराने लगे कि भाई हमारे सतीश भाई हैं, बड़े कोई व्यक्ति रहा होगा, याद नहीं है, तो बताया कि सतीश भाई हमारे गीतकार हैं। तो कहते, पूरा सुना भी नहीं, कहते भाई एक बात बताओ, आप लोग देखते हैं तो इतना चेहरा खिला हुआ होता है जैसे नहा धो के निकले हैं। तो हमने कहा भाई हम नहा धो के ही निकलते हैं घर से, बिना उसके निकलते ही नहीं। ताली बजाई। तो ये है, हम सबके पास, हम सब आर्टिस्ट, सच्चे आर्टिस्ट हैं। तो नेपथ्य के कलाकार जो हैं वो ये होते हैं कि जो मंच पे नहीं होते हैं लेकिन मंच वालों को तैयार करते हैं। दूसरी श्रेणी इनकी है। तीसरी श्रेणी है कलाकारों की, जिनको हम कहते हैं कवि, लेखक, साहित्यकार। इनकी बहुत बड़ी कैटेगरी है। आप देखेंगे आपके आसपास तो कला कवि तो होते ही है। हमारे इसमें सभा में मुश्किल से कोई बचा होगा जो कवि ना हो, चलते फिरते उठते बैठते। और बाबा का जो बच्चा बन गया है वो बिना गाए तो रह ही नहीं सकता है। और दुनिया में भी कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो क्या करेगा, वो गाना गाए। और गाना आए या ना गाए, गाना गाना चाहिए, गाना जरूर चाहिए। कोई रूम में गाएगा, कोई बाथरूम में गाएगा, कोई मंच पे गाएगा, लेकिन सब गाते हैं। और बाबा के बनने के बाद तो गाना ही निकलता है। हमसे तो सब मिलते हैं, कहते भाई जी मेरी पहली कविता है, इसको जरूर सुन लीजिए। तो मैं समझ जाता हूं कि इसकी कितनी भावनाएं हैं। तो आप सब कवि हैं, आप सब रत्न हैं। आप आसपास देखें, हमारे यूपी में जाइए तो यूपी में हाथरस है, इलाहाबाद है, गली गली में वहां छोटा बच्चा है। हम और दयाल भाई गए हाथरस में, गए तो वो कवि सम्मेलन किया था कवि से मिलने के लिए। तो देखा तो कवि तो दो चार ही आए थे, लेकिन उनके बाल बच्चे बहुत आए थे। तो मैंने कहा कि दयाल भाई ने कहा ये बच्चे ही कितना आ गए, बच्चों का क्लास लेना है क्या? तो पता लगा कि वो बच्चे जो है वो कवि है, और सारे बच्चे ही कवि निकले। तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कवि। तो इनकी सेवा करने के लिए आप अपने आप कमर कस लीजिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है कवि, लेखक और साहित्यकार। और चौथा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध व्यवसायों के कलाकार। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो कलाकार ना हो। पहले तो जाति होती थी, अब सब जाति चेंज हो गया है, अब वो जाति नहीं रह गई, अब कलाकार हो गए। पहले नाई होते थे, आप जानते हैं नाई, अब नाई नहीं रह गए, अब हेयर आर्ट। पहले धोबी होते थे, अब धोबी नहीं है, उनका भी एक एसोसिएशन होता है। पहले बढ़ई होते थे, कारपेंटर, अब उनके टिम्बर मर्चेंट्स के, उनके इतने ढेर सारे होते हैं, ऐसा आर्ट बनाते हैं, पूरा आर्ट जो है वो लकड़ी में बना देते हैं। ग्रिल डिजाइनर्स, पहले सोनार होते थे, अब सोनार नहीं कहे जाते हैं, अब ज्वेलरी डिजाइनर्स। ज्वेलरी डिजाइनर्स क्या होते हैं बड़ा आप जानते हैं ना, पहले कुम्हार होते थे, कुम्हार नहीं, मिट्टी की इतनी मूर्तियों के मूर्ति कलाकार, सैंड आर्टिस्ट, आजकल तो इतनी कलाएं निकली हैं, हवा में बनाते हैं कलाकार, ऐसी चीजें बनाते हैं। तो हर एक व्यवसाय वाले जब तक अपनी कला में आर्ट नहीं, जो अपने व्यवसाय में आर्ट नहीं जोड़ते हैं, तब तक उनका कोई माल खरीदता ही नहीं। यहां तक कि पाक कला, जो भोजन बनाना है, पहले बहनों का ही काम था भोजन घर में बनाना, अब तो होटल मैनेजमेंट में विदेशों से इतनी डिमांड होती है, जो अच्छा कुक है, जो अच्छा खाना बनाते हैं, पाक कला में जो निष्णात है, उनको बड़ी सैलरी होती है, बहुत ढेर सारा मिलता है, होटल मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता है। तो आप देखिए, कोई भी बिना कलाकारों से काम नहीं होता है, सब जगह कलाकार है। तो आपको ये कहने की कहीं गुंजाइश नहीं है कि मेरे यहां आर्टिस्ट नहीं है। समझ में आई बात, पक्का बात समझ में आया, ये सब आर्टिस्ट हैं। केवल आपको उठ के एक थैला लगा रहे और यहां से लिटरेचर मिल जाएगा कल्चरल विंग की ओर से, आप वो कल्चरल विंग के लिटरेचर ले लें और निकल पड़े कि आज मुझे कोई न कोई लोगों को सबको बाबा का ज्ञान देना है, देखना है जिससे मैं मिलने वाला हूं वो कौन सा कलाकार है। और आप करेंगे, क्योंकि मधुबन से यहां से हम तो नहीं जाएंगे आपके पास, आपके पास जो आर्टिस्ट है उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी सेवा के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो ये सेवा नहीं होगी, और धर्मराजपुरी में पूछा जाएगा कि आपने मैसेज क्यों नहीं दिया इनको, पक्का चलेगा। अब आपकी ताजपोशी का यह रहस्य है, आपको कल्चरल विंग की इसलिए मेंबर बनाया गया है, अब आपकी जो सेवाएं हो उनका वीडियो हो, उनका ऑडियो हो, अच्छी रिकॉर्डिंग हो, फोटोग्राफी हो, और हमको मधुबन तक पहुंचाएं। आप आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में खूब सेवाएं करें, तन से सेवा क्या कर सकते हैं, मन से क्या कर सकते हैं, धन से जो सेवा करना चाहते हैं, कल्चरल विंग की सेवाएं और हमारी मल्टीप्लाई हो, तो हमारे RERF पर चेक के माध्यम से आप उनको भेज सकते हैं, ये सेवा कर सकते हैं। जन के माध्यम से, जो आपके स्कूलों में है, विद्यालय में है, तो आपके ढेर सारे बच्चे हैं, उन सब बच्चों को, अभी हम गए थे अपनी कुंदा दीदी के पास चंदपुर में, तो वहां पर ब्रह्मपुरी में गए, वहां के अध्यापकों से मिले, बच्चों के स्कूल में गए, कई जगह कार्यक्रम गए, तो आपके पास बनी बनाई स्टेज होती है, आप बहुत सेवा कर सकते हैं। आपका जोरदार एक बार अभिनंदन, स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से भ्राता जी का अभिनंदन करेंगे। इतना विस्तार में आपने बहुत अच्छे रूप से विंग की सेवाओं के बारे में बताया, तो अभी ज्यादा आप सभी का समय नहीं लेंगे, जो जा रहे हैं वो कृपया बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, आप सभी से निवेदन है। और बाकी जो है, आप सबने बीच में भी हाथ उठाया, फिर से एक बार हाथ उठा करके अपनी आप सहमति जताएंगे कि जो इस विंग की सेवाओं को करेंगे, इतनी जानकारी मिली, तो अब जो करेंगे वो हाथ उठाएं, शुरुआत करेंगे, संकल्प करें, तो बाबा की मदद मिलेगी। बहुत अच्छा, अपने लिए भी आप ताली बजाएं कि आप सभी करेंगे, इस संकल्प को याद रखना। अभी हम दयाल भाई जी से सुनना चाहेंगे, आप दयाल भाई जी से भी सभी अच्छे रूप से परिचित हैं कि आप 92 में ज्ञान में आए, 94 में समर्पित हुए, जब ज्ञान सरोवर का निर्माण के समय आपको दादी जी ने बुलाया, और तब से ही आप यहाँ की सेवाओं को देखते हैं, और आप विशेष अभी हमें अगस्त मास में जो आर्ट एंड कल्चरल विंग की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस की सेवा को कैसे हमें अच्छे रूप से करना है। आदरणीय दयाल भाई जी।
ओम शांति। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि किन किन की सेवा करनी है और कैसे करनी है। जब आप लोग सेवा के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कोई डांस स्कूल में जाएंगे, कोई नाटकशाला में जाएंगे, जैसे इतना सारा सतीश भाई ने बताया कि किसी भी प्रकार का जो प्रोफेशन होता है उसको कलात्मक बनाना एक कलाकार का काम होता है ना। खाना तो सब बनाते हैं, लेकिन उसमें स्वच्छता हो, सफाई हो, बाबा की याद हो, है ना, ये तो और भी हम लोग उसमें एडिशन करते हैं। तो अब अगले महीने अगस्त में, 5 अगस्त से 9 अगस्त मनमोहिनी वन में अपनी कॉन्फ्रेंस है। हर साल कॉन्फ्रेंस 11 यहाँ पर ज्ञान सरोवर में होती है, लेकिन इस साल सारी कॉन्फ्रेंसेज 20 विंग है, पूरे करीब करीब 20 विंग की कॉन्फ्रेंसेज नीचे मनमोहिनी वन में शिफ्ट हो गई है। तो उसमें से कल्चरल विंग की जो कॉन्फ्रेंस है 5 तारीख को गेस्ट आएंगे, 6, 7, 8 कॉन्फ्रेंस होगी और 9 तारीख को सुबह मुरली क्लास के बाद में जाएंगे। जैसे भट्टी का पैटर्न है कि जिस दिन आने का दिन है उसकी शाम को वेलकम सेशन होता है। ये आप लोग सब जो मेंबर्स है नोट कर लेवे कि जैसे 5 तारीख को कॉन्फ्रेंस है तो 5 तारीख को दिन भर लोग आएंगे, 5 की शाम को वेलकम सेशन होगा और 6 की सुबह इनॉग्रल सेशन होगा। 6, 7, 8 हमारी कॉन्फ्रेंस चलेगी और 9 को सुबह मुरली क्लास के बाद में या अपने फर्स्ट सेशन के बाद में डिपार्चर रहता है। ये फिक्स है, ये स्केड्यूल फिक्स है हर एक विंग का करीब करीब। और उसमें से ज्ञान स्वरूप में एवरी फ्राइडे को लोग आते हैं, सैटरडे संडे मंडे रहते हैं, ट्यूसडे को उनका जाना शुरू हो जाता है, वेडनेसडे थर्सडे साफ सफाई और नेक्स्ट फ्राइडे को फिर दूसरा ग्रुप। ये सेटिंग आप अपने दिमाग में या लिख लेवे। मैंने देखा सतीश भाई कुछ बता रहे थे अभी, तो कुछ बहने लिख रही थी, बहुत अच्छी बात है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने हमेशा नोट करना लिखने की आदत अपने आप पे रखनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग जरूर कोशिश करें, और उसके लिए फोल्डर भी प्रिंट हो गए हैं और हम लोगों ने बहुत सारे सेंटरों में एक महीना पहले करीब करीब ईमेल कौन कौन यूज करता है, बहुत कम। व्हाट्सएप कौन कौन यूज करते हैं, व्हाट्सएप वाले ज्यादा हैं। तो फोन में जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ईमेल भी यूज कर सकते हैं। ईमेल को हम लोग इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि ईमेल में क्लैरिटी ज्यादा होती है। कोई फोटो आपको भेजा है या फोल्डर आपको भेजा है तो व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर ईमेल में और उसको फोटो भी बहुत क्लियर उसमें होता है। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है आर्ट एंड कल्चर विंग के लाइफ मेंबर्स का, उनके थ्रू भी फोल्डर, और किसी को फोल्डर चाहिए तो रिसेप्शन में है हिंदी में इंग्लिश में, आप जाते समय लेके जाना या तो आज ही लेके कभी भी जैसे आते जाते रिसेप्शन से आप ले सकते हैं। तो फोल्डर भी आप जरूर लेके जाइए। और अभी मार्जिन है कॉन्फ्रेंस में, हमको 500 की संख्या स्वीकार दी है मुन्नी बहन जी ने, और अभी हमारे करीब 180-200 के आसपास हो गए हैं। तो अभी आप लोग वापस अपने अपने क्षेत्र में जाकर जरूर अच्छे से सेवा करके अच्छे अच्छे कलाकारों को लेके आए। और दूसरी बात, कलाकारों को इस तरीके से कन्विंस करें कि आप देखो बहुत सारे ये कोरोना के इफेक्ट, जो बैड इफेक्ट जो लोगों को आए हैं, उसमें से कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान रहा, कौन से वर्ग ने सबसे ज्यादा सुसाइड की, बताइए, जिसकी चर्चा भी बहुत हुई, आर्टिस्ट है ना, बॉलीवुड के आर्टिस्ट, कलकत्ता के आर्टिस्ट। अभी यहां से 15 दिन पहले मुझे खबर आई 3 लोगों ने फिर से सुसाइड किया कलकत्ता में। तो क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि जो मनोबल उतना होना चाहिए वो उतना मनोबल नहीं है। तो हमारा क्या काम है, राजयोग के द्वारा मनोबल को बढ़ाना। तो आप लोग जब किसी आर्टिस्ट को कन्विंस करने जाएंगे तो आप फोल्डर भी लेके जाएंगे, अपना आर्ट एंड कल्चर विंग का कार्ड भी लेके जाएंगे, लाइफ मेंबरशिप कार्ड जो आपको मिला है, ताकि आपकी पहचान हो कि आप कौन हो, कहां से आए हो, ऐसे बाय द वे रोड से चलते हुए नहीं आए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे पत्रिकाएं हैं, हमारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर आप उनको देंगे और हमें बताएंगे कि कलाकार वर्ग को मेंटली शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। कारण यह है कि कलाकार बहुत भावुक होता है, जल्दी भावनाओं में आ जाता है, इसलिए वो अपने माइंड को जल्दी स्टेबल नहीं कर पाता। तो इसलिए ये राजयोग का हम लोग कॉन्फ्रेंस रखे हैं, और आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बाकी विंग में 3 या 4 मैक्सिमम राजयोग के लेसन्स होते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस में हमने 5 राजयोग के लेसन्स रखे हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र, गुणों के ऊपर और मेडिटेशन, यानी एक प्रकार की शिविर का ढांचा होता है हमारे कॉन्फ्रेंस का। हम दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अनुभव किया गया है कि शिविर की रिजल्ट बहुत अच्छी निकलती है देन द कॉन्फ्रेंस। लेकिन फिर हम शिविर ही क्यों नहीं रखते, क्योंकि शिविर का नाम सुनते बार-बार बड़े बड़े कलाकार नहीं आते। शिविर शिविर में क्या करना है, हाँ कॉन्फ्रेंस बोलेंगे तो उनको बिठाएंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनको बोलने का चांस देंगे, तो ये सब जब ये जो होता है प्रोसेस, तो उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं। इसलिए बाबा ने विंग्स बनवाई है, ताकि बड़े बड़े लोग भी, जो नामी ग्रामी लोग हैं, वो भी इसमें भाग ले सके। लेकिन फायदा सबसे ज्यादा है राजयोग एजुकेशन में, राजयोग की जो पढ़ाई हमारी है उसमें। तो आप उनको जब जाएंगे कन्विंस करने के लिए, तो ये बोल के कन्विंस करना है कि हमको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना है कलाकारों की। तो आपको भी किसी भी परिस्थिति में, अगर आपको अचल अडोल रहना है, पॉजिटिव रहना है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, तो आप जरूर चलिए। आई मीन दे शुड फील कि ये उनका बेनिफिट है, उनका फायदा है, वहां जाने में उनको फायदा होने वाला है। हमारा टॉक, हमारा एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए। दोस्त, कोविड के पहले सिंटा में मैं गया था, सिनेमा एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन जो बॉम्बे में है, जहां पर अमिताभ बच्चन से लेके बहुत सारे मोर देन 7,000 आर्टिस्ट उनके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो एक बहन आई थी, वो उसी विंग की लाइफ मेंबर थी, अंजलि अरोरा बहन यहां पर घूमने के लिए आई थी, उनसे पहचान हुई, उन्होंने मेरे सामने बैठे बैठे सिंटा को फोन किया और अपॉइंटमेंट हुई। और उसके बाद में फिर मैं बॉम्बे गया और सिंटा के ऑफिस के अंदर हम लोगों ने 5 क्लासेस कराई। तपस्विनी बहन भी है वहां पर, उन्होंने भी कुछ क्लासेस कराई, और मोनिका बहन है, कुछ ऐसे भी कलाकार है बॉलीवुड के कलाकार है जो अभी टीचर बन गए हैं ब्रह्म कुमारीज के, वो सेंटर से जुड़ गए हैं रेगुलरली, और रेगुलर बीकेबी बन गए हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कुछ नाम, तो और भी जुड़ते जा रहे हैं। पिछले कॉन्फ्रेंस में हमारे पास में करीब 15-20 बॉलीवुड के प्रोफेशनल आर्टिस्ट आए थे, सबके सब ने कोर्स किया है, सबके सब किसी न किसी सेंटर से जुड़े हुए हैं। और अभी भी कुछ प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, बोरीवली में भी हुआ था, वहां पे भी उन लोगों को, वो सारे कलाकारों को बुलाया गया था। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखें, कि हम जिनके भी पास जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए, वो हाँ होंगे। हमारी टॉक ऐसी होनी चाहिए, इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए, और मटेरियल हमारे पास में ऐसा होना चाहिए कि हम उनको अपने, उनके कल्याण के लिए, और बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है सबका कल्याण करने का है, तो ये भी दोनों काम हमारा होता रहे। तो ये एक इंडिविजुअल भी कर सकता है विद द कॉपरेशन ऑफ सेंटर, सेंटर का सहयोग जरूर लेना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, पूना में विद्या बहन है, फैमिली लेडी है, घर में रहती है, उनके हस्बैंड है, उसके 2 बच्चे हैं, वो इतनी सेवा करती है अपने सेंटर के द्वारा कि और कोई नहीं करता है। दूसरा विश्वनाथ भाई बेंगलोर में है, फैमिली मैन है, युगल हस्बैंड है, लेकिन बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं सेंटर के सहयोग से। तो उसी तरीके से मिनेश भाई है हमारे बड़ौदा वाले, उनकी तो बातें छोड़ो मिनेश भाई कहां बैठे हैं, मीनेश भाई से भी हम सुनेंगे। अभी मुझे लेके गए थे बड़ौदा, और ऐसे एरिया में लेके गए जो आदिवासी एरिया है, जहां कोई सोच ही नहीं सकता। तो वहां पर इन लोगों ने स्कूलों को पकड़ा, स्कूलों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका कॉम्पिटिशन रखे बहुत सारे प्रकार के, और वो कॉम्पिटिशन से उनके पेरेंट्स भी आए और वो सेंटर पे भी आए, उनको एग्जीबिशन भी कराया, दिखाया, और कितनी वहां पर सेवा हुई। तो सेवा का अगर हमारे में उमंग उत्साह है तो तरीके बहुत निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है एक एक कलाकार को हम ढूंढते फिरे, स्कूलों के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, एसोसिएशन में जहां पे भी है, हम अपना टेक्निक थोड़ा सा चेंज करके सेवा कर सकते हैं। तो मुझे बहुत आशा है आप लोगों को ये जो भट्टी का भी फायदा मिला, और एनर्जेटिक भी आप लोग हो गए होंगे। बाबा को साथ में लेके आप लोग जरूर बहुत अच्छी सेवा का रिजल्ट लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा आशा है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
आदरणीय दयाल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बताया कि कैसे कॉन्फ्रेंस की आपको सेवा करनी है और सबको लेकर के आना है, तो जरूर सभी करेंगे। मैं समझती हूँ सभी समझ भी गए हैं और संकल्प भी जरूर करें, और उनको गेस्ट को जरूर लेकर के आना है। अभी कल श्रीकांत भाई जी का क्लास सबने किया, तो उसमें प्रैक्टिकल उन्होंने कहा मेडिटेशन का क्या प्रभाव है, तो हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रमाण, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे हमारे नितिन भाई जी, थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, आईसीयू में थे, और अभी सीधा ही हॉस्पिटल से ही हम सभी के बीच में आ रहे हैं, और हम सभी के बीच में गीत प्रस्तुत करेंगे आदरणीय नितिन भाई जी। नितिन भाई जी जो बचपन से ही इस ज्ञान में हैं, और आप ज्ञान सरोवर की सेवाएं बहुत अच्छे रूप से करते हैं, ज्ञान सरोवर में आप विंग की सेवाएं भी बहुत अच्छे रूप से करते हैं, दयाल भाई जी के राइट हैंड हैं, और हाँ जी, तो नितिन भाई जी हम सभी के बीच में आ रहे हैं, तो आप जोरदार और तालियों से नितिन भाई जी का स्वागत करें, कि देखो नितिन भाई जी का अपना भी योग कितना है और आप सबने भी योग किया तो इसका भी प्रभाव नितिन भाई जी को मिला, और जोरदार तालियों से, कितनी खुशी की बात है हम सभी के लिए।
ओम शांति। अचानक का पार्ट, ड्रामा का पार्ट तो बाबा ने फिक्स किया ही है, पता भी है, और बाबा ने बोला एवर रेडी। खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, दो गेम खेले, तीसरे गेम में थोड़ा सा पेन शुरू हो गया और बहुत अनइजीनेस फील होना शुरू हो गया, कि जैसे हाथ पैर में जान ही नहीं, और पसीना पसीना से लथपथ, बिल्कुल खड़ा भी मेरे से नहीं हो पा रहा था, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, खेलकूद करता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। फिर भाइयों को बोला मैंने कि मुझे ले चलो, तो भाई मुझे पहले डिस्पेंसरी लेके गए, वहाँ दो टैबलेट्स दी, लेकिन बहुत अनइजीनेस था, फिर आईसीयू में लेके गए, पूरी रात आईसीयू में थे, और बाबा की दया, कृपा, मेहरबानी, वरदान और आप सबका योग, इसकी बदौलत आज आपके सामने हूँ। हमारा जीवन वो खिवैया है, हमारा हमारी नैया का वो खिवैया है, हमारी पतवार हमने उसको दे दी है कि वो जैसे भी जहां भी ले जाए हम तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।
तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। शिवैया मेरी मैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले हो जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। शिवैया मेरी मैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। शिवैया मेरी मैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। पलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐशान वो आलम वो ऊंची है हस्ती। पलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐशान वो आलम ऊंची है हस्ती, ऐशान आलम ऊंची है हस्ती। तेरी नजरे इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजरे इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया किया रुख इधर। शिवैया मेरी मैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया। दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर।
दिल से शुक्रिया। जो आप सबने अनुभव किया ये है तपस्या का बल, जो सीधा हॉस्पिटल से आईसीयू में थे और आकर के अपना गीत रखा, जो कोई कह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे बाबा के एग्जाम्पल बच्चे हैं। अभी समय की सुई तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन आप सभी बाबा के बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं। बहुत अभी थोड़ा सा ही कार्यक्रम है, अभी हम सभी के बीच में बड़ी वरिष्ठ बहनें बैठी हैं। तो पहले मैं निवेदन करूंगी, करनाल से अपनी प्रेम बेन जी पधारे हैं और आप वहां के सब जोन की भी सेवाओं को संभालते हैं और आप आर्ट एंड कल्चरल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आप संक्षिप्त में अपना सेवा समाचार आर्ट एंड कल्चरल विंग का सुनाएंगे कि जो वर्तमान समय में आपने की है। आदरणीय प्रेम बेन जी।
ओम शांति। परम आदरणीय गुलजार दादी जी, आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी, उषा बहन जी की सूक्ष्म प्रेरणा से, और आदरणीय कुसुम दीदी जी, आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी और आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी की स्थूल रूप में सन्मुख प्रेरणा से आर्ट एंड कल्चर विंग से जुड़ना हुआ। यूं तो हर एक विंग की सेवा बहुत ही लगन और प्यार से करने का भाव रहता है, लेकिन जब से कुसुम दीदी ने प्रेरणा दी, इस विंग के हम करीब आए, नजदीक आए, तो बहुत उमंग उत्साह हमारा और भी बढ़ा। और तब से लेकर के बाबा ने बहुत अच्छी भी सेवाएं कराई हैं। और एक बार तो रशिया का कल्चरल ग्रुप भी आया हमारे आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी की प्रेरणा से। हजारों की गैदरिंग का वो सुंदर प्रोग्राम बहुत बड़े ग्राउंड में करनाल में हुआ, जिसमें कि हमारे हरियाणा के सीएम भी पधारे। और एक बार कुसुम दीदी जी भी करनाल आए, तब भी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ एक अभियान के अंतर्गत। और एक निफा ऑर्गेनाइजेशन है करनाल में, कल्चरल और सोशल, हर साल उनके प्रोग्राम्स बड़े बड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो उसमें हमारे आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी और सतीश भाई जी हमेशा ही आते रहे हैं, 8-10 दिन के लिए आकर के बहुत सुंदर वहां की सेवाएं करना। और वहां जो भी आर्टिस्ट आते हैं देश विदेश के, उन सभी को अपनी प्रेरणा देना, और उसके अंतर्गत एक सेशन भी अलग ब्रह्मा कुमारी का रखा जाता रहा है। लेकिन कोरोना काल के 2-3 साल ये प्रोग्राम स्थगित रहा, और वैसे भी इतनी सेवाएं नहीं कर पाए तो नहीं आए थे भाई साहब। लेकिन इस बार हमने 5 जून को एक कवि सम्मेलन रखा। यूं तो पहले भी एक बार कवि सम्मेलन रखा था, जिसमें हमारे मनोज खुशनुमा भाई जी भी करनाल आए थे, लेकिन इस बार आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी और सतीश भाई जी खास इस कार्यक्रम के लिए करनाल में पधारे। और 5 जून को ये नेशनल लेवल का, जैसे कि एक प्रोग्राम था कवि सम्मेलन, तो अलग अलग स्टेट से कवि आए थे और बहुत सुंदर अपनी कविताएं उन्होंने प्रस्तुत की, और बहुत अच्छी गैदरिंग भी रही। और हमारे भाई बहनों ने भी उसमें बहुत मेहनत करके ऑडियंस को भी काफी संख्या में वहां पर एकत्रित किया। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत अच्छे और भी आसपास के सेंटर पर भी हम प्रोग्राम कर पाते हैं। और साथ ही साथ एक दिन हमने आर्टिस्ट का प्रोग्राम रखा, क्योंकि करनाल में लगभग 100 की संख्या हो गई है आर्ट एंड कल्चर विंग के मेंबर्स भाई बहनों की। तो हमने अनाउंस किया कि आप सभी अपने अपने इर्द गिर्द थोड़ा झांकें, हमारे हेड ऑफिस से हमारे आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी, सतीश भाई जी पधारने वाले हैं, तो आप सभी आर्टिस्ट को लेकर के आए, एक गेट टूगेदर हम रखना चाहते हैं। बाबा जैसे कि साथ साथ टच करते गए और हमने सबको वो बात बताते गए, तो हमारे भाई बहनों में इतना उमंग, इतना उत्साह कि वो वर्णन करना मैं नहीं कर पाती हूँ।
जब से वो मेंबर्स बने हैं, जैसे कि उमंग उत्साह इतने हिलोरे लेता है, उनको लगता है कि जितनी भी सेवा हो सके कि बाबा की बहुत अच्छा है। तो सब ने फटाफट अपने आसपास जो है देखा, झांका कि कौन हमारे इर्द गिर्द कोई आर्टिस्ट है। तो 50 से अबव अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को इन्होंने वहां पर हमारे भाई बहनों ने एकत्रित किया, और जिनके समक्ष हमारे दयाल भाई जी को बंदर बाबा ने ऐसी सुंदर खूबी भरी हुई है सबको कन्विंस करने की। वो आर्टिस्ट आए तो उनको कैसे डील करना है, कैसे समझाना है उनको, वो सारी बात बहुत अच्छे ढंग से उन सभी को कर पाते हैं, जिससे बड़ा अच्छा वो समझ लेते हैं भाई साहब की बात को। और हमारे सतीश भाई जी ने भी उन सबको संबोधित किया, और इसी अंतराल में करनाल के एक पूर्व उद्योग मंत्री भी पधारे, और निफा के जो है चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू जी वो भी आए, और एक और भी प्रोग्राम हुआ मॉरिशियस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उनकी भी एक रसम क्रिया का कार्यक्रम उन्होंने फिर सेंटर पर ही रख लिया। जब उनको पता चला कि भाई साहब और माउंट आबू से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया और कोई कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, और इस प्रकार से आर्टिस्ट की भी सेवाएं हुई, वो भी नजदीक आए। और फिर जो हमारे विंग के भाई बहने बने हैं, जो मेंबर्स बने हैं, एक दिन खास हमने उनके साथ मीटिंग कराई, दोनों हमारे वरिष्ठ भ्रातागण बैठे, और 50 जो है मेंबर्स उस दिन अवेलेबल रहे उस प्रोग्राम के अंदर, और सबकी पिकनिक भी कराई। और क्या फायदा है विंग का मेंबर बनने का, किस तरह से आप सेवाएं और बढ़ा सकते हैं इस विंग की, इस पर बहुत अच्छी तरह से हमारे दोनों ही वरिष्ठ भ्रातागण ने प्रकाश डाला, और सभी के अंदर बहुत उमंग और बहुत उत्साह बढ़ाया। अब माउंट आबू से आए हैं तो खास तपस्वी राजयोगी हमारे भाई साहब, तो विशेष भट्टी का भी आयोजन किया, और उसमें भी लगभग 250-300 भाई बहने बिल्कुल सफेद वस्त्रधारी पक्के बाबा के बच्चे, जिन्होंने बैठ करके भट्टी का आनंद लिया, और बहुत अच्छी अच्छी डीप ज्ञान और योग की क्लासेस हमारे आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी ने और आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी ने कराई। तो एक पंथ और कई काज एक ही बार में हो जाते हैं मैं समझती हूँ, जब हमारे हेड ऑफिस से हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ जो हैं इस विंग के जो मुख्य हैं वो जब आते हैं तो कई प्रकार का लाभ हम उनसे ले पाते हैं। इसलिए अधिक न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे आज जितने भी विंग के मेंबर्स बैठे हैं, हम अपने अंदर उमंग भरें, उत्साह भरें, और कुछ कर गुजरने की सोचें, तो हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, थोड़ा भी हम संकल्प रचेंगे कि हम करना चाहते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाएं। जरूर बाबा ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आप खुद भी वंडर खाते हैं कि आपने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी सेवा हो जाएगी, उससे भी कई गुना बढ़िया सेवा हो जाती है। तो इसलिए अवश्य ही उमंग उत्साह को साथ लेकर के चलें आप सभी, और अपने इर्द गिर्द और जो भी के भाई बहने हैं उनको भी प्रेरणा दें कि वो भी इस विंग के मेंबर बनकर इस विंग की सेवाओं को आगे बढ़ाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम बेन जी, आपने सभी में बहुत अच्छा उमंग उत्साह भरा। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय पूनम बेन जी को, आप दिल्ली से पधारे हैं और आपको दिल्ली राजधानी की सेवा, आर्ट एंड कल्चरल विंग की सेवा आपको आदरणीय गुलजार दादी जी ने करीब 35 वर्षों से सौंपी, और आप बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से सेवाएं कर रहे हैं। अब आपको बाबा ने निमित्त बनाया है, नेशनल रूप से भी आप आर्ट एंड कल्चरल विंग की सेवाएं देख रहे हैं। तो मैं पूनम बेन जी से निवेदन करूंगी आप संक्षिप्त में जो वर्तमान सेवाएं आपने दिल्ली की है तो संक्षिप्त में सुनाएंगे।
ओम शांति। आज बड़ा ही मन प्रसन्न हो रहा है इस बात को सुनाते हुए कि कला संस्कृति प्रभाग की ओर से भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए या स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमारी सभी दादियों के द्वारा, वरिष्ठ के द्वारा जो प्रयास लगातार भारत में यज्ञ के स्थानांतरित होने के बाद चलते रहे, उसमें कोविड का जो वर्ष था, अमृत महोत्सव का जो वर्ष था, सेवाओं के अंदर एक मील पत्थर साबित हुआ, एक वरदान का वर्ष हमारे लिए साबित हुआ, क्योंकि जो भारत सरकार की ओर से अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन होना और उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली से ऑनलाइन के द्वारा होना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण प्राप्ति थी इस यज्ञ की। लेकिन कोविड वर्ष के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन के कार्यक्रमों की भी शोभा अपने ही तरीके से रही अमृत महोत्सव की। विशेष दिल्ली की बात पर आते हैं कि जनवरी के महीने से लेकर के और मार्च के महीने तक ऑनलाइन की सेवाओं के अंतर्गत दो प्रकार के कार्यक्रम विशेष किए। एक टॉक शो का, जिसमें हमने प्योरली ये सोचा कि कलाकारों को हम आत्मा के जो आदि अनादि गुण हैं, जब तक वो हमारे को धारण नहीं होते तो हम देवत्व की ओर बढ़ नहीं सकते, स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ नहीं सकते। तो उस टॉक शो के अंतर्गत हमने एक अपने वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका को लिया, यानी जो मेन पोजीशन पर, जैसे अपने आशा दीदी, जैसे अपने कुसुम दीदी जी विशेष, और भी जो मुख्य उनको लेते हुए साथ में एक हमने कलाकार को लिया, एक हमने मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर को लिया, जिससे वो मेडिकली जो है इस बात को प्रूफ करें कि टेंशन फ्री लाइफ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर अपनी जो जोन इंचार्ज बहनें, वरिष्ठ बहनें, उनके द्वारा मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे उस आदि अनादि गुण को धारण करें, उसी गुण की ही विशेष कमेंट्री कराते हुए वो एक टॉक शो बनाया। और वो बन के तैयार है हमारा, लेकिन अभी संकल्प ये है कि आदरणीय कुसुम दीदी जी का जो 16 जुलाई को स्मृति दिवस इस मंथ का होगा, तो उसको हम अपनी YouTube जो कला संस्कृति की बनी हुई है उस पर हम उसको सबको दिखाएं, क्योंकि वो 6-7 दिन चलेगा। उस समय हमने इतने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि लक्ष्य था उसको पीस ऑफ माइंड तक पहुंचाने का, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाया। तो अभी ऐसा सोचा हुआ है उस समय का वो ऑनलाइन का एक प्रोग्राम। दूसरा ऑनलाइन का पेंटिंग कंपटीशन का, नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का किया था। तीसरा मेकअप आर्टिस्ट का, जैसे अभी सुन ही रहे थे, और गोल्डन एज के अंदर तो हर देवी देवता खूबसूरत होंगे ही होंगे, लेकिन उस खूबसूरती को लाने वाले कौन? मेकअप आर्टिस्ट, उनका भी एक बहुत बड़ा दायरा है। तो उन लोगों के द्वारा ऑनलाइन फोटोज मंगाए गए थे कि जो भारत के प्रिंस प्रिंसेस होते थे, उनकी ड्रेस कैसे होती थी, उनका कल्चर कैसे होता था, उनका मेकअप श्रृंगार कैसे, इस प्रकार से वो कंपटीशन लेवल का हमने रखा था। फिर चौथा प्रोग्राम ऑनलाइन का हमने शिवरात्रि का, जैसे आया उस समय फरवरी के महीने में, तो शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, उसका नटराज रूप सामने लाने के लिए, अपनी ही जो विंग की सीनियर बहने थी उनके द्वारा हमने एक जूम मीटिंग के द्वारा उस प्रोग्राम को भी किया। एक प्रोग्राम कवियों के सम्मेलन का ऑनलाइन श्री फोर्ट सेंटर की ओर से, जो अपनी शीतल गांधी बहन है, वो खुद कवित्री है और उसके साथ बहुत सारे कवि जुड़े हुए हैं, तो एक ऑनलाइन प्रोग्राम वो किया। मार्च के महीने तक हमने ये प्रोग्राम किए। फिर जैसे ही ऑफलाइन हुआ, 6 मार्च को पहला कला संस्कृति प्रभाग की ओर से अमृत महोत्सव के उद्घाटन का प्रोग्राम हमने साउथ दिल्ली के एरिया की ओर सरिता विहार में एक हाल लेकर के किया, जिसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं थी, लेकिन जितनी थी वो सारी क्रीम जेंट्री थी। और उसमें विशेष रूप से जो गवर्नमेंट ने इस अमृत महोत्सव के प्रोग्राम को करने के लिए जिस व्यक्ति को मेन नियुक्त किया था, अपने कनोडिया जी को, वो इसमें विशेष अतिथि के रूप में पधारे थे। और एक पंजाबी फेमस सिंगर जिनका आजकल बहुत नाम है, शंकर सहानी जी, वो उसमें उपस्थित थे। तो बहुत ही वो प्रोग्राम सफल रहा। वहां से जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर विंग के ऑफलाइन के प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी थी। और अपने चंद्रपुर में फिर 20 मार्च को बड़े ही धूमधाम से एक मेगा प्रोग्राम का रूप देकर के, जो कि हम सब ने यूट्यूब पर लाइव भी देखा था, हजारों ने उस प्रोग्राम का लाभ उठाया। और फिर दिल्ली के अंदर हमने अप्रैल के महीने से, 27 अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक 5 दिन के लिए अपने आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी और भ्राता सतीश भाई जी को दिल्ली में विशेष रूप से ऑफलाइन की सेवाओं के लिए बुलाया। उद्घाटन प्रोग्राम में देखिए कितना बाबा का सहयोग, हिम्मत हम बच्चों की, लेकिन बाबा कैसे अपने हर प्रोग्राम को विधिवत, चाहे हम जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, लेकिन बाबा करण करावन हार करवाता है। सतीश भाई जी का फोन आया कि मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं आऊंगा, नितिन भाई मेरे साथ होंगे। और इनका इतना बिजी शेड्यूल, सवेरे दिल्ली में उतरे, शाम को प्रोग्राम और रात की फ्लाइट से इनको दूसरे प्रोग्राम में जाना था। तो देखिए कैसे बाबा हिम्मत रखने वाले बच्चों की मदद करता है। ये प्रैक्टिकल प्रमाण दिल्ली का उद्घाटन प्रोग्राम का आपको सुना रही हूँ। फिर 27 अप्रैल को जो अपना भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय है, शास्त्री भवन है, वहां पर पहला प्रोग्राम हुआ 27 अप्रैल को शाम को। फिर अपने स्वास्थ्य विहार में हुआ पब्लिक प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम के निमित्त हमारी उर्मिला बहन स्वास्थ्य विहार वाली थी, तो सांस्कृतिक मंत्रालय का जो प्रोग्राम था, वंडरफुल बात यह कि वहां पर अपने राजीव जैन भाई विशेष, वहां पर कई डिपार्टमेंट के वो हेड थे, और अपने भ्राता दयाल जी को अचानक ही याद आया। इसी प्रकार से हम मंच पर बैठे हुए और वहीं बैठे बैठे कह रहे कि राजीव जैन जी इसी बिल्डिंग में कार्य करते हैं, तो हम उनको फोन करके पूछते हैं, अगर वो बैठे हैं तो वो आ जाएं। उनको हमने कोई इनविटेशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना कि भाई बहनें आई हुई हैं, दयाल भाई आए हैं मधुबन से, और अपनी वो भी अंजलि अरोड़ा जी भी साथ में थी, उनके वो लौकिक भाई, तो तुरंत वो नीचे आए और पूरा प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। और वहां की तो जो गैदरिंग थी, सारे ही गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स लेवल के व्यक्ति थे, और वो बाद में अपने ऑफिस में भी लेकर के गए। और आगे के लिए भी उन्होंने वायदा किया कि मैं राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करूंगा। और वहां पर ऑलरेडी बीके बहने जो वहां सर्विस करती हैं, वहां पर मुरली की क्लास चलती है, बकायदा भोग भी लगता है। तो इस प्रकार से एक विशेष सेवा वहां पर शास्त्री भवन के अंदर हुई अमृत महोत्सव के अंतर्गत। फिर तो जो हमने कहे थे प्रोग्रामों का कि दिल्ली की ओर से ये प्रोग्राम होंगे, तो एक डांस कंपटीशन का प्रोग्राम अप्रैल से पहले मार्च के महीने के अंदर ही अपने टैगोर पार्क सेवा केंद्र की ओर से बहुत ही सुंदर आयोजित हुआ। और उसमें भी विशेष कल्चरल मिनिस्ट्री से ही व्यक्ति प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे। तो 26, 27, 28 दिल्ली के चारों कोनों में, पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, चारों ओर प्रोग्राम करते हुए लास्ट में 30 तारीख को हमने ओआरसी में, 29 और 30 तारीख, 2 दिन का प्रोग्राम ओआरसी में किया। 29-30 की योग भट्टी रखी, जैसे अभी आपकी हो रही है, योग भट्टी का प्रोग्राम भी था, और जो हमने ऑनलाइन कंपटीशन किए थे उसका एक बड़ा प्रोग्राम ओआरसी में किया, जिसमें जो है भारत के प्रसिद्ध सिंगर हंस राज हंस जी, सबने नाम सुना होगा, पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो वो आए और वो तो वहां के वातावरण को देखकर इतने अधिक प्रभावित हुए कि जब उन्होंने स्टेज पर बोलना और अपने गीत गाना शुरू किया, टोटल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ही उन्होंने क्रिएट कर दिया था, इतना सुंदर उन्होंने उनके ऊपर वहां के वातावरण का, थोड़ी देर रुके वो लेकिन उसका प्रभाव आया। तो इस प्रकार से जो मेकअप आर्टिस्ट की भी जो मेन इंडिया की लीडर थी वो उस प्रोग्राम के अंदर आई हुई थी और उसने अपने हाथ से जो भी थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए, और इसके साथ साथ जो पेंटिंग वाले थे वो भी 60-70 के लगभग थे, उसमें से विनर अलग थे लेकिन पार्टिसिपेंट जितने भी करने वाले थे उन सबको ओआरसी से भी गिफ्ट दिया गया और साथ में सर्टिफिकेट दयाल भाई जी, सतीश भाई जी, हमारी आदरणीय कृष्णा बहन जी दिल्ली से हैं, जो आदरणीय पुष्पा बहन जी पांडव भवन से दिल्ली से, इन सबके द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया। तो इस प्रकार से जो अमृत महोत्सव के प्रोग्रामों की कहानी दिल्ली में ऑफलाइन 1 मई का प्रोग्राम समयपुर में करते हुए सतीश भाई और दयाल भाई विदाई लेकर के आगे के प्रोग्रामों के लिए चले गए। अभी बचे हुए महीने हैं, हो सकता है कोई और प्रोग्राम बन जाए। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बेन जी, आपको दिल्ली राजधानी की सेवा की जिम्मेवारी मिली है, बहुत उमंग उत्साह रहता है, आप उसको कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। अभी हम अमरावती से महाराष्ट्र से पधारे सीता बहन जी से पिंक की सेवाओं को संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे, समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है तो संक्षिप्त में ही सुनाएंगे तो अच्छा है। आप विदर्भ जोन कोऑर्डिनेटर भी हैं आर्ट एंड कल्चरल विंग के, और आप अमरावती सब जोन इंचार्ज भी हैं, तो आप अपनी सेवाओं को सुनाएंगे, हम सभी के बीच में रखेंगे।
ओम शांति। सबसे पहले परम कलाकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और अभी मंचा सिंह जो महानुभाव सभी बैठे हैं उसमें हमारे दयाल भाई सतीश भाई जी जिन्होंने अभी अभी वहाँ चंद्रपुर में हमारी कुसुम दीदी के उपलक्ष में आप पहुँचे थे और वहाँ उनके श्रद्धांजलि, तो उनके साथ उन्होंने कहा आपको भी इस सेवा में आना है, तो उनके लिए भी हम जोरदार तालियां जिन्होंने ये सेवा का हम सबको मौका दिया। बाकी कहना मैं ये चाहूंगी कि शुरू में उषा दीदी जी थी और एक दिन कला संस्कृति आर्ट कल्चर की मीटिंग चल रही थी, उसमें दादी भी थी, जो नीचे दादी जी जो हॉल मीटिंग हॉल बना, तो हम दोनों बहनों को आजू बाजू में रखा और उषा बहन हमारे तरफ और कुसुम दीदी की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि आप लोगों को संभालना है। तो वैसे तो सोशल विंग के मैं होने के नाते हमारी प्रेम बहन को भी पता है सारे कल्चरर जो भी ड्रामा सभी हम बना करके ले जाते थे और जो भी सोशल्स की एक्टिविटीज उसके अंदर में सारा कार्य करते ही रहे, तो हमारी दीदी जी जुड़ी हुई थी तो इसीलिए हम भी उनके साथ साथ थे। लेकिन आज मैं उषा दीदी जी को भूल नहीं सकती क्योंकि अमरावती सेवा का भी उनके द्वारा ही एक बीजारोपण हुआ, हम तो 73-74 सेंटर पर आए और 75 में हमारा समर्पण समारोह हुआ, तो उसके 2 साल पहले ही हमारी उषा दीदी जी अकोला आई थी क्योंकि उस समय साकार बाबा थे, तो वर्धा में सेंटर खुला, फिर उसके बाद नागपुर खुला और उसके साथ जिस जिले में हम थे तो वहां पर एक सेंटर खुला, वहीं उषा दीदी जी आई थी और पहला प्रोग्राम उन्होंने खास अमरावती में किया, तो इसीलिए हमारी उषा दीदी जी आज व्यक्त में नहीं लेकिन बहुत प्यार था रमेश भाई और उषा बहन जी का। रमेश भाई भी अमरावती आकर के गए, उषा दीदी भी आकर के गए, तो तहे दिल से उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका ही एक दृढ़ संकल्प था जिस संकल्पों ने यहाँ तक हम सबको पहुंचाया। उसके साथ चलते चलते हम जब सेवाएं करने लगे तो एक व्यसन मुक्ति जो निकला था मेडिकल विंग के अंतर्गत, उसमें भी हमने सेवाएं की, जिस सेवा के लिए हमारे डॉक्टर परब, आज सचिन भाई परब, वो अमरावती में एक मास लगातार उन्होंने सेवाएं की, और हमारी माजी राष्ट्रपति प्रतिभा भाई पाटिल उनके द्वारा सारे महाराष्ट्र लेवल पर व्यसन मुक्ति का लॉन्चिंग अमरावती में हुआ, और वहां से ही हमको फिर एक अवार्ड भी मिला। तो ये भी एक शिव बाबा की कहो और बाबा के कार्य की, इन महान आत्माओं की एक शक्ति ही कहे। तो हमेशा ही ये उमंग और उत्साह रहा कि जो भी बाबा का यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में जो बाबा हम सबसे सेवाएं करना चाहेंगे वो जरूर जहां कहीं भी तो बाबा की सेवा के लिए हम उपस्थित रहेंगे। फिर जब ये प्रोग्राम मिला तो उसके पहले दिसंबर में वहां रमेश भाई जब आए थे और वहां नया नया भवन बना था, उस समय तो परिस्थिति आप सब जानते हैं 74, 75, 78 उस समय तो कुछ इतनी सेवाएं थी नहीं, तो भवन भी ऐसा ऊपर में थोड़े से थी, तो रमेश भाई बोल रहे थे सीता अभी तुमको और बड़ा भवन बनाना पड़ेगा। तो सचमुच उनके भी एक वरदान रहे, आज अमरावती में 6-7 भवन भी है। और हमारे सूरज भाई जी जो दिसंबर में उनका हमने प्रोग्राम बनाया सेंटर उद्घाटन का, तो उसी समय हिंदू मुस्लिम वहां पर थोड़ा सा जो झगड़ा चला उसके अंदर में 8 दिन पूरा ही सारे नेट ये सब कुछ बंद हो चुका और सारा प्रोग्राम भी हमको कैंसिल करना पड़ा। तो ड्रामा ही कहा कि एक आजादी का अमृत महोत्सव, तो 6 जनवरी से हमने इस कार्यक्रम का लॉन्चिंग किया जिसके अंदर में वहां की नवनीत राणा खासदार भी थी, MLA भी थे राणा करके, और हमारे सूरज भाई जी भी थे। वहां से इस कार्यक्रम की जब शुरुआत, कार्यक्रम भी बहुत धूमधाम से वहां के सारे विशेष विशेष VVIPs के साथ, और साथ में अपने ब्राह्मण बाबा के बच्चों के लिए सूरज भाई जी का भट्टी प्रोग्राम भी चला। फिर उसके साथ साथ और आगे बढ़े तो हमारा जो महिला विंग है, तो महिला विंग के अंतर्गत भी वहां पर वहां की MLA उनको भी बुला करके, और वहां के विशेष 100 ऐसी विशेष विशेष हमारी VIPs जो महिलाएं हैं उनको बुलाया, वो भी एक कार्यक्रम हुआ। फिर उसके साथ दूसरा एक कार्यक्रम आर्ट और कल्चर, जब यहां से हम सबको बाबा ने जब सेवा का कार्य दिया तो वहां भी एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर बना है, तो जहां पर हमने उसका उद्घाटन किया वहां का एक बोड़े करके है और बहुत प्रख्यात है, और भी ऐसे आर्ट कल्चर के अंतर्गत वहां पर सेवाएं करने वाले ऐसे ग्रुप से हर एक को हम बुलाते थे, उनको परिचय देते थे, उनको सारा ये सब सुनाते थे। अब वो भी 6-7-8 लोगों का ग्रुप लेकर अपना जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्ट और कल्चरल स्विंग की, तो उसमें वो डांस के प्रोग्राम लेकर के आएंगे। फिर उसके साथ अभी जो हमारे प्रोग्राम चलेंगे तो 23 अभी जुलाई आ रही है, वहां डॉक्टरों का भी एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है, हमारे डॉक्टर आशा ठाकरे 30/35 का एक अच्छी सेवा है उनके गायनिक के रूप से और भी सभी से वो जुड़ी हुई है। तो वहां पर एक गर्भ संस्कार करके 500 महिलाओं का वहां पर बड़ा कार्यक्रम बड़े हॉल के अंदर में अभी इसी अमृत महोत्सव आजादी के उपलक्ष्य में, और इसके साथ साथ हम तो अभी जिस विंग से जुड़े हुए हैं वो भी उसके अंदर में हम कनेक्ट करके और उस कार्यक्रम को भी हम अभी करेंगे। फिर उसके साथ तीसरा प्रोग्राम है हमारे पास वीवी गिरीश और उनके साथ और भी एक शुभदा करके डॉक्टर मुंबई, तो वो भी आएंगी। फिर 500 लोगों का ऐसा एक शिविर रखा और उसमें भी VVIPs अमरावती के सारे बुला करके वहां भी उनकी सेवाएं हम आज करने का एक संकल्प प्रोग्राम भी पूरा बन चुका, उसके कार्ड और पर्चे वो भी छप रहे हैं। तो इस तरह से जो भी वर्तमान जो पिछली हुई सो तो हुई, लेकिन वर्तमान इस आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम जो जो प्रोग्राम सभी करने जा रहे हैं तो उसमें और भी 2 विंग्स को हमने ऐड किया। एक वहां जुरिस्ट विंग है, सेंटर की एक बहन है वो भी वकील है, इसलिए जुरिस्ट्रिंग का एक प्रोग्राम करेंगे, फिर उसके साथ वहां सारे बिजनेस भी जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस वालों का भी इन्हों आज वीवी गिरीश पटेल जो समझो हमारे पास पहुंचेंगे तो उनके साथ ये भी एक कार्यक्रम उसके साथ होंगे। तो ऐसी सेवाएं जो बाबा हम सबको दे रहा कर रहे, फिर सोशल विंग भी आ रही 19 से लेकर वो जो चल रहा उसमें भी एक कल्चरर का एक ग्रुप वहां पर जाएगा, वहां पर भी उनको हम सेवाएं देंगे और यहां पर भी हम अपने भाई जी को जरूर कहेंगे और हमारी नेहा बहन को भी और हमारे और साथी जो बहनें हैं उन सबको भी, अगर जो भी सेवाएं आप हमको देते रहेंगे तो जरूर उस सेवाओं के लिए हम तत्पर रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सीता बहन जी का। अभी हम कार्यक्रम के अंत में, मीटिंग के अंत में मिनेश भाई जी से सुनना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त में ही। आप मिनेश भाई जी से सभी परिचित होंगे, आप बड़ौदा कारलीबाग सेंटर से हैं और आप यूट्यूब शिव स्मृति चैनल चलाते हैं और इसी के 40,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो अभी आप बाप दादा की प्रेरणा के आधार से आपने अनुभव का ये चैनल चलाया, तो अभी आप विंग की विशेष हम सभी सुनना चाहेंगे, आर्ट एंड कल्चरल विंग की सेवाएं इस वर्ष में क्या की है, बाकी तो सब बेहद की सेवा करते हैं, तो विंग की सेवा तो संक्षिप्त में 2 मिनट में सुनाएंगे आदरणीय मिनेश भाई जी।
मेरे हाथ में माइक आते ही आप सबके चेहरे पे बहुत खुशी आ गई और उस खुशी की वजह मैं जानता हूं कि अब आपको पता पड़ गया कि फाइनली अब ये मीटिंग पूरी हो जाएगी। मैं समझ सकता हूं आपकी इस खुशी को और मुझे यूं तो 7 मिनट दी गई थी लेकिन अब मैं इसको 3 मिनट में पूरा करूंगा और जो जो समय की सुई आगे बढ़ती गई तो मेरा लिस्ट बहुत लंबा था, एक 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 आइटम में काटता गया, ये पेज पूरा हो गया है और अब इस पेज पे भी मैंने कुछ आइटम कट कर दी है ताकि आप लोगों को मुझे ज्यादा सहन नहीं करना पड़ेगा। एनीवे ये भी आर्ट है। तो जैसे अभी बहन जी ने सुनाया कि जो जो सेवाएं की है वो सुनाई जाए, लेकिन क्षमा करना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, वो लंबा लिस्ट है वो मैं काट रहा हूं और जो अभी आगे हम करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा रूप में, वो भी पॉलिश ना करके रॉ मटेरियल रूप में आपके दे दूंगा ताकि आपका समय ना जाए। लेकिन मजेदार बात एक जरूरी है सुनानी, वो सुना देता हूं। अमृत महोत्सव का उल्लेख मेरे पूर्व वक्ताओं ने किया तो हमने कोई कार्यक्रम उसमें नहीं किया था और मैं ऑफिस में बैठा था विंग ऑफिस में और हमारा संजय भाई है विंग ऑफिस में तो वो थोड़ा अलग उसकी प्रकृति है तो वो बोल रहा था छोड़ो गुजरातियों की बातों को, सारे गुजरात में कोई प्रोग्राम करता ही नहीं है, गुजरात में कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा भैया गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुतर गुजराती, तू भी गुजराती मैं भी गुजराती, ऐसा नहीं है। तो उसने जो कहा तो वहां से हमने अमृत महोत्सव का सिलसिला शुरू किया, काफी प्रोग्राम्स कर लिए और जैसे मैंने सुनाया उस पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी नेक्स्ट जो है हम लोग एक रशिया का प्रोग्राम सोच रहे हैं और डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, दीदी जी से बात करके हम डेट लेंगे। साथ साथ रशिया का जो प्रोग्राम बड़ौदा में होगा तो बड़ौदा के बाजू में जैसे दयाल भाई ने जिक्र किया छोटा उदयपुर, तो वहां पैलेस है और वहां की जो रानी है वो मुसलमान है, बहुत सुंदर पैलेस है और पैलेस के अंदर ये प्रोग्राम रशिया वालों का होगा, तो बड़ौदा में होगा इसके बाद रशिया में। आदरणीय सीता दीदी जी का भी विचार है तो शायद वहां भी बात बन जाएगी, तो ये एक प्रोग्राम होने वाला है। दूसरा गुजरात जोन लेवल की एक रिट्रीट सोची गई है, दयाल भाई ने भी सम्मति दी है, अभी डेट उसका भी फाइनल नहीं हुआ, तो छोटा उदयपुर में 2 दिन का एक रिट्रीट होने वाला है। बाकी एक इसके बाद एक कवि संगोष्ठी भी हम करेंगे, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कवि सम्मेलन और कवि संगोष्ठी में क्या अंतर होता है, तो मैंने बीच में सतीश भाई को पूछा भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स। इसके बाद हम एक कलाकारों का स्नेह मिलन का आयोजन करने जा रहे हैं, तो बड़ौदा और इर्द गिर्द के विस्तार के बहुत सारे कलाकार हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और इस तरह से इनकी सेवा की जाए। और एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आर्ट एंड कल्चर विंग के बैनर के तले हम करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह से काफी प्रोजेक्ट हमारे अभी पाइपलाइन में कहेंगे है। और एक हटके थोड़ा विचार है, विदेश में विंग्स की सेवाएं नहीं है, विदेश की सेवाओं का तौर तरीका अलग होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाएं कनाडा में, कनाडा के बहुत बड़े बड़े कलाकारों को इकट्ठा करके कनाडा में कैनेडियन लोकल सेंटर के साथ रह करके एक सेवा का भी संकल्प है। वो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन संकल्प है तो बाबा फिर उसको पूरा भी करवाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे मैंने प्रॉमिस की थी, 3 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। अच्छा जी, ओम शांति।
मिनेश भाई जी का
एक बात कहनी रहेगी कि आप सब जो समाचार सुन रहे हैं, यहां से जाने के बाद एक संकल्प करें कि हमें छोटा से लेकर के बड़ा जो भी कार्यक्रम है करना जरूर है, और उसका क्या रूपरेखा होगी, कुछ भी बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिव करने के लिए, आपका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब समाचार सुनाए गए। तो आप सब अवश्य करेंगे, सब करेंगे ना। हाँ, सब बहनों से मिल करके क्या कर सकते हैं उसकी आप ऑफिस से जानकारी ले सकेंगे, और हम लोगों को भी फोन कर सकते हैं और हम आपको राय देंगे, लेकिन करना जरूर है। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मिनेश भाई जी का, आपने संस्कृत ने सुनाया। और सब स्टेज पर जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं उनका नाम सहित एक एक का धन्यवाद, क्योंकि समय अधिक हो रहा है तो नाम सहित सभी का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी का कि जो आप इतना धीरज से सभी बैठे और सबने सुना, तो अपने लिए सभी जोरदार तालियों से अपना अभिनंदन करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के अंत में हम परमात्मा की शुभाबा की याद में बैठेंगे, तो एक गीत हम सभी के बीच में बांदा शहर से, अपने उत्तर प्रदेश बांदा से संगीता बहन पधारे हैं, तो हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और अपना गीत हम सभी के बीच में रखेंगे। संगीता बहन,
मंचासी, सभी वरिष्ठ भाइयों बहनों, हमारे इस विंग के सभी भाइयों बहनों, मैं आज आपके सामने एक सतीश भाई जी का ही लिखा हुआ एक गीत सुनाने जा रही हूँ। और इस गीत में हम सभी की मनोदशा का बहुत अच्छा चित्रण किया है भाई जी ने, और उससे उस गीत को संगीत से इतना अच्छा सजाया है कि इस गीत में 4 चांद लग गए। लेकिन इस गीत को गाया है एक मेल सिंगर ने, और मैं क्योंकि अपनी फीमेल वॉइस में ही गा रही हूँ तो इसको एक मौलिकता के रूप से लेंगे, तो आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है। तो लीजिए, प्रस्तुत है गीत। गीत के नाम नहीं बोल रही हूँ। तपती मन हो मेरे, आत्मचेती मेरी, बुझ रहे दीप को जैसे देते मिली। तपती मन को मेरे, आत्मचेती मेरी, बुझ रहे दीप को जैसे देते मिली। जब पड़े दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़े आपके दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे, Thank you.
अच्छा गीत गाया बहन ने। सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हमारे नेहा दीदी जी का। आप इस विंग के उपाध्यक्ष बने हैं और हमारे आदरणीय दयाल भाई जी इस विंग के अध्यक्ष हैं और हमारी प्रेम बहन जी और पूनम बहन जी को आदरणीय कुसुम दीदी जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और हमारी सीता बहन जी भी, सीता दीदी जी को भी जैसे अभी विदर्भ कोऑर्डिनेटर हमारे सतीश भाई दयाल भाई जी तथा आज विशेष चंद्रपुर की तरफ से बनाया गया है। तो इन सभी महान विभूतियों को बारंबार तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।